मीरा की भक्ति का सामाजिक संदर्भ डॉक्टर सत्यपाल शर्मा। भावना के स्तर पर भक्ति नितांत वैयक्तिक कर्म है, लेकिन हिंदी का भक्ति काल सामाजिक संदर्भों से गहरे रूप में संपृक्त है। समूचा भक्ति काव्य भक्ति आंदोलन की उपज है। भक्ति आंदोलन व्यापक रूप से साहित्यिक आंदोलन ही नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन है। यह आंदोलन सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक राजनीतिक परिस्थितियों की उपज है। इसमें साहित्यिक उत्कर्ष है, साथ ही भारतीय संस्कृति और परंपरा के सूक्ष्म गहन पड़ताल भी। भक्ति काल में युग अपने अंतर्विरोधों के साथ संपूर्णता में अभिव्यक्त हुआ है। भक्ति काव्य की विविध धाराएं भक्ति पद्धति और ईश्वर के स्वरूप में भिन्न है, पर लक्ष्य सबका कमोवेश एक है। भक्ति आंदोलन सामाजिक विषमता के खिल्ली उड़ाते हुए उसका विरोध करते हुए मानव मात्र की एकता पर बल देता है। तुलसीदास के यहाँ वर्ण आश्रम व्यवस्था का समर्थन है, परंतु इसकी विसंगतियों के प्रति विरोध भी। भक्ति आंदोलन वस्तुतः सामंत विरोधी आंदोलन है। इसमें सामंती सत्ता व्यवस्था का स्पष्ट नकार है, उसे सीधे चुनौती तक दी गई है। कुंभनदास का प्रचलित पद संतन सो कहाँ सी करी सो काम सामंती वैभव विलास के आकर्षण को चुटकी में दता बता देता है। अब का तुलसी होंगी नर के मनसबदार द्वारा तुलसीदास अकबर की सीधे खिल्ले उड़ाते। कबीर तो सामंती सत्ता के झंडा बरदार पंडित और मौलवी की खिल्ली हिड़े ही उड़ाते सीधे चुनौती देते हैं। सूरदास कृष्ण और गोपियों के माध्यम से सामंती व्यवस्था की मर्यादा को तार तार खंडित कर देते हैं। मीरा काव्य में ही नहीं बल्कि जीवन में भी सामंती राजघराना से लोहा लेती है। जायसी दरबार से जुड़े होने पर पद्मावत का नायक राजा रत्नसेन प्रेम की खातिर राज्य का सुख वैभव त्याग कर जंगल पहाड़ का संघर्ष मोड़ लेता है। हिंदी साहित्य के इतिहास और आलोचना में भक्ति काव्य के चार कवि तुलसी सूर कबीर जैसे ही प्राय केंद्र में रहे हैं। इन कवियों की महत्ता सर्वविदित है और यह मानना होगा कि इनकी आड़ में अनेक कवियों की उपेक्षा भी हुई है। सदियों से उपेक्षित दलित और स्त्री समुदाय ने इतिहास का पुनर्विश्लेषण किया। इस क्रम में भक्ति काल की महत्वपूर्ण कवियत्री मीरा वर्तमान संदर्भों में अधिक महत्वपूर्ण हो उठी हैं। उनके काव्य भक्ति के स्वरूप और सामाजिक संदर्भों में उसकी पड़ताल समीचीन है। भक्ति काव्य मध्यकालीन है। मध्यकाल में नारी की स्थिति बहुत अच्छी न थी। नारी चाहे जिस वर्ग की हो उसकी स्थिति अच्छी न थी। मीरा का उल्लेख इसका प्रमाण है। मीरा उच्च घराने की थी। इनका विवाह सिसोदिया राजघराना में हुआ। विवाह के 7 वर्ष उपरांत उनके पति की मृत्यु हो गई। बचपन के सत्संगति ने मीरा को कृष्ण भक्ति की तरफ उन्मुख किया। वे कृष्ण भक्ति में लीन रहकर साधु संगति में समय गुजारने लगी। सामंती राजघराने को मीरा का यह कृत्य नागवार गुजरा। मीरा के देवर ने उन्हें अनेक तरह की यातनाएं दी। कहते हैं मीरा को विष का प्याला भी दिया गया, पिटारी में सांप भेजे गए, परंतु उसका असर न हुआ। वे वृंदावन चली गई, फिर गिरधर नागर की खोज में द्वारिका गई। यही उनका बाकी जीवन बीता। इस तरह मीरा मध्यकाल की भक्त कवित्री के रूप में प्रसिद्ध है। निश्चित रूप से मीरा भक्त थी, लेकिन भक्ति स्वरूप उनकी कविता का विश्लेषण करें तो उनके रूप में हमें एक ऐसी मध्यकालीन भारतीय नारी दिखाई देती है जो अपने समय की सामंती सत्ता के बंधनों और मर्यादाओं से अप्रतिहत टकराती है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ठीक ही लिखा है कि मीरा का काव्य उन विरल उदाहरणों में से है जहाँ रचनाकार का जीवन और काव्य एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। परस्पर के संपर्क से वे एक दूसरे को समृद्ध करते हैं। बच्चन सिंह ने मीरा के जीवन और काव्य तथा सामंती अभिजात से उसके संबंध के संदर्भ में लिखा है, मीराबाई एक ओर सामंती अभिजात्य को एक झटके में तोड़ डालती हैं तो दूसरी ओर उनकी रचनाओं में अभिजात्य का संयम दिखाई पड़ता है। कहना मुश्किल है जीवन में सामंती अभिजात्य को झटके से तोड़ देने वाली मीरा रचनाओं में अभिजात्य का संयम क्यों बरतेंगी। अभिजात संयम की बात उस कवित्री के लिए जो सिसोदिया वंश को सीधे चुनौती देती है कि वह रूठ कर मेरा क्या कर लेगा। सिसोदिया रूठो तो मारो काई कर लेसी। इतना ही नहीं, वह सामंती अभिजात लोकलाज और कुल की मर्यादा को तोड़ने की स्पष्ट घोषणा करती है। लोकलाज कुल की मर्याद या मैं एक न राखूंगी। पति की मृत्यु पर राजस्थानी सामंती परंपरा के अनुसार वे सती नहीं हुई, विधवा होने के बावजूद कृष्ण को उन्होंने पति के रूप में स्वीकार किया। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वस्तुतः मीरा के भक्ति का संदर्भ वैयक्तिक ही नहीं सामाजिक है। सामाजिक संदर्भों में जुड़कर ही मीरा के भक्ति का विकास होता है। सामाजिक संदर्भों में देख कर उनकी भक्ति के असल स्वरूप को समझा जा सकता है। उनकी भक्ति नितांत वैयक्तिक मनोकामना से युक्त नहीं बल्कि सामाजिक परिस्थितियों की उपज है। वह सामंती जकड़न के विरुद्ध प्रतिरोध तो है ही, पर उससे पहले उस व्यवस्था क्रूरता और विभत्सता के बचाव का कवच भी। सामंती घराने के प्रतिनिधि राणा से मुकाबला करने के लिए उससे बड़ी सत्ता की जरूरत है। मध्यकालीन अभरा नारी के विरोध का साहस स्तुत्य है, पर प्रतिरोध के लिए पर्याप्त नहीं। उसे राणा के बरक्स उससे प्रभावशाली व्यक्ति की तलाश थी। यह तलाश ईश्वर के रूप में पूरी होती है। मध्यकाल में स्त्री से बढ़कर भला कौन शक्तिशाली हो सकता, ईश्वर से बढ़कर भला कौन शक्तिशाली हो सकता था। भक्ति और सामंती दरबार में बुनियादी विरोध है। यद्यपि भक्ति मर्यादित सामाजिक कर्म है, लेकिन सामंती व्यवस्था गैर बराबरी पर आधारित है और भक्ति मानव मात्र की एकता और बराबरी पर आधारित है। भक्त कवि सामंती समाज व्यवस्था की मानवीय विसंगतियों का विरोध करते थे। मीरा राजघराने की थी। सामान्य भक्तिन की तरह साधु संगति करना राजघराने की मर्यादा के प्रतिकूल था। भक्ति के क्रांतिकारी स्वरूप को समझते हुए विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है, यह भक्ति कैसी थी जिसने समस्त राज परिवार को मीरा के विरुद्ध खड़ा कर दिया। वह भक्ति सामंती व्यवस्था की समर्थक भी थी या विरोधी, जो भक्त कवियों को दरबार में जाने से रोकती थी और यदि कोई राजकुल में जन्मा भी तो उसे राजकुल छोड़ने पर विवश कर देती थी। राजकुल छोड़कर भी मीरा संतुष्ट नहीं होती। वे शासक की मूर्खता और अत्याचार पर सीधे प्रहार करती है। मूरख जन सिंहासन राजा पंडित फिरता द्वारा, मीरा रे प्रभु गिरधरन नागर राणा भगत संहारा। मीरा सीधा आक्षेप हमें कबीर भारतेंदु धूमिल की याद दिलाता है। मीरा का जीवन संघर्ष उनके वैधव्य से शुरू हुआ। पति की मृत्यु पर वे सतीन होकर भक्तिन हो गईं। विधवा का जीवन कितना त्रासद होता है हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी का यह अनुमान गलत नहीं है। सभी को मीरा ने बाद में छोड़ा होगा। सभी ने मीरा को छोड़ना उपेक्षित करना पहले शुरू कर दिया होगा। एक बार भक्ति के रंग में रंगने के बाद मीरा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पति की मृत्यु, सास ननद के ताने, देवर राणा के अत्याचार, पिता की मृत्यु और लोक द्वारा निंदा आदि ने मीरा के सामने कठिन स्थिति खड़ी कर दी। इन सब स्थितियों से मुक्ति का मार्ग उन्हें ईश्वर की तरफ खींच ले गया। मध्यकालीन नारी, यद्यपि यह बात वर्तमान नारी के लिए भी सही है, के लिए सबसे बड़ा बंधन था कुल की मर्यादा। मर्यादा या लोकलाज का आवरण सामंती पुरुष सत्ता द्वारा निर्मित है। यह मर्यादा उन पर थोपी जाती है जिनके ऊपर सामंती सत्ता शासन करती है। पर असलियत यह है कि इस तरह के मर्यादाओं का आवरण जिसे शासित जन पर लादा जाता है, उसे सामंती सत्ता अपनी सुरक्षा के लिए तैयार करती है, ताकि उन मर्यादाओं की आड़ में लिपटी नारी सामंती पुरुष सत्ता के प्रतिरोध की बात सोच ही न सके, प्रतिरोध करने की बात ही दूर। सामंती पुरुष सत्ता से टकराने के लिए उसके द्वारा बनाए गए और पीड़ित वर्ग पर लादे गए मर्यादा आवरण का निषेध अनिवार्य है। प्रतिपक्ष द्वारा थोपे गए कुल मर्यादा के आवरणों का निषेध किए बगैर उसका मुकाबला ठीक से संभव नहीं। प्रतिपक्ष को उसकी भाषा में जवाब देने के लिए उस पर ऐसे वार करने की जरूरत होती है जिससे वह बेपर्दा हो जाए। यह अनायास नहीं है कि मीरा की कविता में लोकलाज तजने की बात बार बार जोर देकर दोहराई गई है। मीरा सूरदास की उस गोपिका की तरह है जो मुरली की धुन सुनते ही लोकराज के मर्यादा को छोड़ देती है। मुरली की धुन कान पर है, कुल कान ही हो तजी भाजती है। यह कुल की मर्यादा सामंती मर्यादा है जो पुरुषों द्वारा स्त्रियों पर ला दी गई है। स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा बंधन यही है। मीरा ने कृष्ण भक्ति हेतु लोकलाज छोड़ दिया। माई समारोह रंग राची, साज सिंगार बांध पंग घुंघरू, लोकलाज तज नाची, गया कुमत लया साधा, संगत श्याम प्रीत जग साची। सूरदास की गोपियां कम क्रांतिकारी नहीं है। वे कुंवारी हैं या विवाहिता हैं, सब अपने ऊपर लादी सामाजिक मर्यादाओं के आवरण को तोड़ डालती है। यह भले ही भाव सत्य हो, जगत सत्य नहीं, पर भक्ति काल में इस तरह की कल्पना करना भी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। निश्चय ही सूरदास मध्यकालीन स्थिति में ही नहीं, वर्तमान परिदृश्य से भी आगे की क्रांतिकारी हैं। आज भी हम कितने प्रगतिशील और आधुनिक क्यों न हो गए हों, व्यवहार जगत में अपनी बहन, बेटी, बहू या पत्नी को क्या मर्यादा भंग की इजाजत देंगे या उसके द्वारा मर्यादा भंग के बाद उसे स्वीकार करेंगे। मीरा सूरदास की गोपियों से भी आगे, गोपियां तो कृष्ण के काल की हैं, उनके सम्मुख कृष्ण अपने अलौकिक शक्ति चमत्कार के साथ उपस्थित हैं। मीरा मध्यकाल की हैं, उनके सम्मुख कृष्ण साक्षात उपस्थित नहीं हैं, फिर भी गोपियों को कुलकान तजने के लिए कृष्ण की बांसुरी की धुन की जरूरत पड़ती है। मीरा के समक्ष बांसुरी की धुन नहीं है, उन्हें उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, वे सीधे कृष्ण धुन सुनती हैं। गोपियों की तरह यहाँ कृष्ण उन्हें बुलाने नहीं आते, बल्कि मीरा स्वयं कृष्ण के पास जाती है। गोपियों के पास बांसुरी धुन का बहाना है, मीरा को किसी बहाने की जरूरत नहीं। इसमें संदेह नहीं कि मीरा का लोक लाज तजना गोपियों से ज़्यादा क्रांतिकारी और साहस का कार्य है। मीरा अपने समय और समाज से बेखबर नहीं है, उन्हें पता है कि सास उन्हें कुल का नाश करने वाली कहती है। पगबाँध घुंघरियाँ नाच्यारी, लोक कहिया मीरा बांवरी, सासु कहिया कुल नाशारी। असल में यह लोक की चिंता नहीं, बल्कि उस पर व्यंग है जो कृष्ण भक्ति में लीन मीरा को बावली समझता है। लोक लाज तजने पर मीरा को अनेक तरह से सताया गया। मीरा ने अपने काव्य में इसका उल्लेख किया है कि सास लड़ती है, ननद खींचती है, पहरा बिठाया गया है, ताला जड़ा गया है ताकि मीरा बाहर न जा सके। इतना ही नहीं, लोग कड़वा सच बोलते हैं और मीरा की हंसी उड़ाते हैं। मीरा ने आंसू के जल से सींच सींच कर कृष्ण भक्ति रूप प्रेम बलि बोया, राणा ने विष का प्याला भेजा, मीरा ने उसे भी हंसकर पी लिया। मीरा को लोक निंदा की परवाह न थी, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बदनामी उन्हें मीठी लगती है, इसलिए वह वैसी ही चाल चलेंगी। राणा जी माने या बदनामी लगे मीठी, कोई निंदा कोई बिंदो में चलूंगी चाल अनूठी। बदनामी का मीठा लगना इस बात का संकेत है कि वह किस कदर विकराल हो गई। कहावत है कि दर्द जब हद से गुजरता है तब दवा बन जाता है, कुछ इसी तरह मीरा को इतनी बदनामी मिली होगी कि उन्हें उसके सहने की आदत पड़ गई होगी। फिर एक समय आया होगा जब उन्होंने उसकी परवाह छोड़ दी होगी। इस रूप में भी मीरा क्रांतिकारी है। आज भी कितने लोग हैं जो बदनामी की परवाह नहीं करते। मीराबाई पुरुष नहीं बल्कि स्त्री, वह भी आधुनिक काल की नहीं मध्यकाल की, बदनामी की परवाह नहीं करती, बल्कि उससे आगे बढ़कर ऐसी चाल चलती हैं कि उन्हें बदनामी ही मिले। आज भी ऐसा साहस कितनों के पास है। मीरा लोकलाज मर्यादा बदनामी से ऊपर उठ चुकी थी। उन्होंने कीचड़ उछालने वालों को अपने घर की इज्जत बचाने की सलाह दी। अपने घर का पर्दा कर ले मैं अबला वैराणी। मीरा को अपने समाज की विसंगतियों की पहचान थी। वे अपने युग के दुख दर्द को ठीक से महसूस कर रही थी। प्रचलित मुहावरों और सदी हुई सीधी भाषा में भी उन्होंने अपने युग के साथ साथ मानव जीवन की प्रमाणिक अनुभूतियों को प्रभावी वाणी प्रदान की, यथा हेरी मदा दर्द दिमाड़ा, मारा दर्द न जाण्या कोई, घायल रीगत घायल जाण्या, हिबड़ो अगण संजोय। यह मात्र एक कवित्री मीरा का दर्द नहीं है, यह मध्ययुगीन नारी का दर्द है। मीरा का काव्य अपने युग की नारी के दर्द का काव्य है। मीरा अपने समान धर्मी की तलाश में द्रौपदी, अहिल्या, शबरी और सुदामा को याद करती हैं और इनकी सहायता करने वाले कृष्ण राम रूप ईश्वर को, जो अबलों का सहारा है। मीरा बाई के लिए कृष्ण राम में भेद नहीं, तभी तो सुदामा के प्रसंग में राम की बात करती हैं। देखत राम हसे सुदामा को, देखत राम हसे। मीरा की कविता को नितांत व्यक्ति कहकर उसका महत्व कमतर नहीं किया जा सकता। छायावादी कविता निराला के सरोज स्मृति की तरह मीरा की कविता व्यापक सामाजिक संदर्भ रखती है। कबीर ने तो घोषणा की थी कि तू कहता कागज की देखी, लेखी मैं कहता आंखन की देखी। मीरा ने उसे आगे बढ़कर आंखों देखी नहीं, बल्कि स्वयं भोगे का वर्णन किया। मीरा ने कहीं भी अपने युग की नारी वेदना के व्यक्ति की घोषणा नहीं की, और सामंती पुरुष प्रधान समाज में रहते हुए स्वयं के दुख और विरोधियों के दंश की खुली अभिव्यक्ति कम साहस की बात नहीं। मीरा की भक्ति के संदर्भ में एक सवाल विवादास्पद है, वह है मीरा के आराध्य का स्वरूप। यह विवेचन की मांग करता है। आचार्य शुक्ल का निष्कर्ष है कि मीरा अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। बच्चन सिंह ने सवाल खड़ा किया कि कृष्ण को अन्य कवियों ने कन्हैया, वंशीधर, नंदनंदन, श्याम सुंदर आदि नामों से याद किया है, केवल मीरा नहीं गिरधर नागर को प्रियतम के रूप में क्यों याद किया। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अनेक पदों का उल्लेख करते हुए लिखा है, पद का आरंभ जोगी या जोगिया के उल्लेख से होता है और अंत में गिरधर नागर या श्याम का ध्यान आता है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने सवाल उठाया है, मीरा का प्रेम अज्ञात प्रियतम भगवान के प्रति था, लेकिन क्या दीर्घ वैधव्य में उन्हें मृत पति की याद बिल्कुल ना आई होगी। मीरा के भक्ति का स्वरूप निर्गुण, सगुण, नाथपंथी, सूफी सबका मिश्रण है। मीरा के भक्ति में निर्गुण पंथ का योग अनहद नाद, शून्य महल, सूरत, त्रिकुटी आदि भी है और सूर के पदों की तरह कृष्ण भी आराध्य प्रियतम के रूप में है और उनके पदों में वह प्रियतम जोगी है। सवाल उठता है कि मीरा का प्रियतम कौन है। इसकी तीन संभावनाएं हैं, देव कृष्ण, प्रिय की स्मृति, मीरा के समय का कोई जोगी। मीरा के आराध्य कृष्ण प्रियतम के रूप में है, इसमें संदेह नहीं। सवाल यह है कि कृष्ण कहीं आवरण में तो नहीं। सवंती समाज से त्रस्त होकर मीरा भक्त बनी थी, ऐसी स्थिति में स्वर्गीय पति की स्मृति को विधवा किस रूप में व्यक्त कर सकती थी। हो सकता है कि मीरा अपने पति की स्मृतियों को भूल न पा रही हो और उन्हें कृष्ण के आवरण में व्यक्त कर दिया हो। इस विचार पर आधार यह है कि पति के साथ मीरा के संबंध मधुर थे और पतिव्रता के प्रति मीरा में सम्मान की भावना थी। तीसरी संभावना यह हो सकती है कि लंबे वैधव्य और साधु संगति में जीवन व्यतीत करने के क्रम में उन्हें अपने समकालीन किसी जोगी से प्रीति हो गई, विधवा भक्तिन के रूप में उसे सीधे स्वीकार करने में संकोच हो और कृष्ण का आवरण डाल दिया गया हो। यह मात्र संभावना ही हो सकती है, इसका कोई प्रमाणिक आधार नहीं। मीरा की भक्ति भावना उनकी विरह भावना से जुड़ी है। मीरा के प्रियतम जोगी का इंतजार है, वह कहीं चला गया है, कहकर नहीं आया है, किसी दूसरे के घर चला गया है। ध्यातव्य है कि मीरा के पति द्वारा दूसरा विवाह करने का संदर्भ भी मिलता है, परंतु यह कितना प्रमाणिक है नहीं कहा जा सकता। जोगी नगर में आया, मीरा उसे रोक नहीं पाई। मीरा को पता है कि वह बोलता मधुर है लेकिन प्रीति नहीं जोड़ता। इस जोगी से कातर विनती करती मीरा को देखिए। जोगी मत जा मत जा मत जा, पाय परों में तेरी चेरी हो, प्रेम भगत को पैरों ही न्यारो, हमको गैल बता जा, अगर चंदन की चिता जलाऊं अपने हाथ लगा जा, जलबल भई भस्म की ढेरी अपने अंग लगा जा, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर ज्योत में ज्योत मिला जा। मीरा ने कुछ पदों में प्रिय से मिलन का सुख भी वर्णन किया है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है, जिसके विरह में मीरा दुखी है और उसे लेकर मीरा ने ऐसी अचूक अभिव्यक्ति की है, उसका लौकिक आधार नहीं होगा, यह मानना संभव नहीं लगता। जिसके विषय में मीरा ने यह सीधी पंक्ति लिखी थी, था देख्या गुण कलणा पढ़ता जाने मार छाती, वह मीरा के अज्ञात प्रीतम का अज्ञात आधार न होगा। यही नहीं, जोगी की राह देखते देखते मीरा क्या को आशंका होती है कि जोगी कहीं मर तो नहीं गया या उसने मीरा को भुला दिया। जोगी कृष्ण है तो उसके मरने की आशंका कहाँ। संभावना यही है कि अज्ञात प्रियतम कृष्ण में मृत पति का रूप घुल मिल गया हो। मीरा के इतने आत्मीय प्रियतम के गुणों को कृष्ण पर आरोपित कर दिया गया है या परिचित आत्मीय प्रियतम कृष्ण के रूप में परिणत हो गया है। फिर भी यह सवाल रह जाता है कि मीरा जब कृष्ण की भक्त हो गई तो जोगी के रूप में प्रियतम को देखने की क्या जरूरत। भक्त कवित्री प्रेमिका की भांति कृष्ण को पाना चाहती है, यह इच्छा जोगी के रूप में कैसे पूरी होगी, क्योंकि जोगी तो खुद ही माया मोह के बंधनों को त्याग कर जोगी बनता है। उससे प्रीत कैसी, और प्रीत हो भी जाए तो उससे प्रतिदान की उम्मीद कैसी। मीरा के यहाँ निर्गुण नाथपंथी, सगुण कृष्ण मार्गी के साथ साथ राम की महिमा और सुखी साधना पद्धति का भी प्रभाव है। ऊपर जोगी को संबोधित पद में स्पष्ट है कि जोगी से चंदन की चिता जलाने का आग्रह है, ताकि मीरा भस्म बनकर जोगी के अंग लग सके, जिस तरह ज्योत ज्योत में मिल सके आत्मा आत्मा का यह मिलन, वह भी मरने के बाद सुखी साधना पद्धति में आत्मा परमात्मा के मिलन से मिलता जुलता है। मीरा के आराध्य कृष्ण है, राम नहीं। मीरा सामंती कुल के मर्यादा से बंधी थी, उस बंधन को तोड़ने के लिए राम के वृक्ष कृष्ण का चरित्र प्रेरणादायक है। राम रघुकुल की रीति के शिकार होते हैं, उसे राम के पिता दशरथ भी नहीं तोड़ पाते, राम मेरे कुल की मर्यादा के वाहक हैं। मेरा अनुमान है कि मीरा कुल की मर्यादा को ध्वंस करना चाहती रही होंगी। पति मृत्यु के उपरांत जीवन संघर्ष में सामंत सत्ता और उसकी कुल मर्यादा के खिलाफत के लिए मीरा के आराध्य कृष्ण ही हो सकते थे। सामंती जंजीरों को तोड़कर पैदा ही हुए थे।